सदा याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले हो, क्योंकि याद से जो शक्तियों की व गुणों की प्राप्ति होती है वो सेवा द्वारा औरों को देना है। तो दोनों ही अच्छी तरह से चेक करते हो कि कभी कभी सेवा ज्यादा होती है तो योग कम, कभी योग ज्यादा तो सेवा कम, ऐसे तो नहीं होता है। सेवा करने से जो खजाने मिले हुए हैं वो बढ़ते हैं, तो बढ़ाने की विधि आती है ना, तो सेवा में होशियार हो या याद में होशियार हो। याद की शक्ति का अर्थ ये है कि जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहां लग जाए, ऐसी शक्ति है। जब चाहो जहाँ चाहो अपनी बुद्धि को लगा सकते हो या टाइम लगता है, कितने टाइम में लगा सकते हो, कोई भी वायुमंडल है, लेकिन कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन को बुद्धि को कितने समय में एकाग्र कर सकते हो। किसी ने कहा सेकंड में, बाबा कहते कहते हो या करते हो, कहना तो सहज है लेकिन एकाग्रता की शक्ति है पा नहीं है, वो समय पर मालूम पड़ता है। परिस्थितियां हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपने हिम्मत से अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर सेकंड में एकाग्र हो सकते हो या टाइम लगेगा। यह अभ्यास सदा करते रहो तो समय पर शक्ति कार्य में ला सकते हो। इसको कहा जाता है जब चाहो, जब चाहे जहां चाहे वहां स्थित हो सकते हैं। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तो ऐसे शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प भी नहीं लाएंगे कि चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है, जो सोचा वो हुआ, ऐसे नहीं सोचते हैं नहीं होना चाहिए और हो जाए। क्योंकि अगर समय पर कोई भी शक्ति काम में नहीं आई तो प्राप्ति के बजाय पश्चाताप करना पड़ेगा, तो प्राप्ति स्वरूप बनो। बाप दादा ने सभी आत्माओं को सर्वशक्तियां वर्षे में दे दी है, तो वर्षे वाली चीज सदा याद रहती है। फलक से कहेंगे ना कि ये शक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो क्या सुना, सदा याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले हो। कर्म करते हुए अगर योग से किनारा कर दिया तो वो क्या है, अलबेलापन स्लोगन था ना। क्योंकि याद से जो शक्तियों की व गुणों की प्राप्ति होती है वो सेवा द्वारा औरों को देना है। क्या देना है, गुण और शक्तियां। तो दोनों ही अच्छी तरह से चेक करते हो कि कभी कभी सेवा ज्यादा होती है तो योग कम, कभी योग ज्यादा तो सेवा कम, ऐसा तो नहीं है। कौन सा अच्छा है, सेवा ज्यादा योग कम कि योग ज्यादा सेवा कम, कौन सा भी नहीं योग ज्यादा
नहीं, बैलेंस अच्छा है
ना। सेवा करने से जो खजाने मिले हुए हैं वह बढ़ते हैं, तो बढ़ाने की विधि आती है ना, तो सेवा में होशियार हो या याद में होशियार हो। याद की शक्ति का अर्थ ही है कि जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लग जाए। हमारी सारी तपस्या कि जो रिजल्ट है वो ये होनी चाहिए कि जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लग जाए। ऐसी शक्ति है जब चाहो जहां चाहो अपनी बुद्धि को लगा सकते हो या टाइम लगेगा, कितने टाइम में लगा सकते हो, कैसा भी वायुमंडल है, लेकिन कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन को बुद्धि में कितने समय में एकाग्र कर सकते हो, सेकंड में एक सेकंड में कहते हो या करते हो। कहना तो सहज है लेकिन एकाग्रता की शक्ति है वह नहीं है, वह समय पर मालूम पड़ता है। एकाग्रता की शक्ति कहाँ से आएगी, उसके लिए दूसरी शक्ति चाहिए, जो कल जिसका वर्णन था, अंतर्मुखता कहो या साइलेंस पावर। बाबा ने कभी कहा है साइलेंस पावर से तुम परिस्थितियों को जीत सकते हो। कैसे, क्योंकि एक मुरली इसी के ऊपर है पूरी, क्योंकि साइलेंस पावर से एकाग्रता आएगी, और जहां एकाग्रता है वहां फिर परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति आएगी, और जहां परखने की शक्ति और जहां परख सकते और निर्णय कर सकते हैं वहां समस्याओं को के ऊपर जीता जा सकता है। तो एकाग्रता की शक्ति है वह नहीं, बस समय पर मालूम पड़ता है कितना हम एकाग्र हो सकते हैं। उसके लिए उसको वैसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि जब चाहो तब बुद्धि स्थिर, स्टॉप कहा तो स्टॉप, जैसे मिलिट्री में होता है ना अबाउट टर्न राइट लेफ्ट तुरंत, तो वैसा बुद्धि हो जाए, क्योंकि हम कौन है, मास्टर रचयिता, त्रिमूर्ति शक्ति अकल वरदान था ना हमारे अधीन है, साकार कर्मेंद्रिय और त्रिमूर्ति शक्ति है, अधिकार की शक्ति से उनको चलाओ। परिस्थितियां हलचल की हो, जब कोई हलचल नहीं तब हम अपने मन को वश में कर सके, ये तो आसान है, पर हमारी ट्रेनिंग किस लिए, हलचल की परिस्थिति के लिए। यहाँ पर मिलिट्री सीआरपीएफ आर्मी एयरफोर्स तीन है माउंट में, एयरफोर्स के लोग हैं, सीआरपीएफ है और आर्मी है, तीन लोग एनडीआरएफ वाले बीच बीच में आते रहते हैं। क्या हुआ, हाँ हुल्लड़, सब होगा, बाबा ने तो कह दिया, मुंबई में भी हुआ था ना कर्फ्यू, राइट्स हुए थे ना जबरदस्त। हाँ तो परिस्थितियां हलचल की हो, तो ये मैं कह रहा था ये लोग जो यहाँ है, अभी कोई युद्ध नहीं हो रहा है फिर भी उनकी दिनचर्या बनी हुई है, फिर भी वो लोग रोज ड्रिल करते हैं, आप देखते होंगे ना भागते हुए, भागते हैं यहाँ से सबके सब, क्या जरूरत है, शांति से बैठो, युद्ध तो कहीं हो नहीं रहा है तो क्यों करना है, फिर भी वो ड्रिल रोज, उनकी वैसी ही दिनचर्या है, आर्मी एयरफोर्स एंड सीआरपीएफ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी उनको बुलाया जा सकता है। अभी भूकंप आया तो 1 घंटे 15 मिनट के अंदर मीटिंग हुई और 2 घंटे के अंदर रवाना हुए भारत के सिपाही, तो कितनी एवर रेडी अवस्था चाहिए, सज्ज। उसके लिए ये सब तैयारियां है, वहां जब परीक्षा आएगी उस परीक्षा के लिए सब कुछ हो रहा है। परिस्थितियां हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो, अभी साधन बहुत श्रेष्ठ, कल टीचर्स को कहा ना बाबा ने, संग वातावरण शुद्ध अन्न सेवा संबंध संपर्क, पांचों साधन मिले हुए महान बनने के लिए, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में वो वातावरण अभी मिला हुआ है, शायद ऐसा वातावरण ना रहे, तमोगुनी हो जाएगा वातावरण, सब और तमोगुण फैल जाएगा, उस तमोगुण में स्थित होते हुए भी उतनी साधना और उतनी तपस्या अगर हमने की है तो हम अप्रभावित रहेंगे, नहीं तो यहां से संसार में जाते ही संसार का वातावरण का प्रभाव चालू हो जाता है, फिर न योग रहता है न ज्ञान रहता है, कुछ नहीं रहता है, केवल नाम मात्र बीके बस। असंभव, कहां से योग, मतलब बुद्धि ऊपर जाती नहीं है, कहां से योग और ये सब स्वप्न मात्र जैसा लगने लगता है, हमने भी कभी बैठकर 1 घंटा बैठा भी था वो याद भी नहीं आता है हमें, वो कौन से दिन थे पता नहीं जिस दिन हम ऐसे बैठे थे, अभी तो 1 मिनट 5 मिनट नहीं बैठ सकते, हाँ वो पास्ट की लाइफ हो गई बस, वो यादें रह गई है सुनहरी स्वर्णिम यादें बस, पर अभी उसका कोई अनुभव नहीं, कोई उससे तादात्म्य नहीं, कोई संबंध नहीं बस, बहुत संसार का वातावरण ऐसा शक्तिशाली वातावरण है, पावरफुल है, तमोगुण प्रधान है उसमें। विकार तो वायु में है, जहां देखो वहां विकारों की हवाएं चल रही है। हर मन में विकार है, हर मन में काम और क्रोध है, हर मन लोभ से ग्रसित है, और वैसे ही वाइब्रेशन और वृत्ति है वातावरण। वहां कहां से संसार से वैराग और देह से न्यारा होना और शरीर से अलग होकर ऊपर जाना, बाबा से रूरियान करना, वहां केवल भक्ति का स्वरूप है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का शिव बाबा से रूरियान करना और मांगना, कुछ कुछ दे दो, शक्ति दे दो, ये दे दो, सफलता दे दो, नहीं बस साधनाएं चालू नहीं, साधना होती नहीं है, इतना कठिन है। पर ऐसे वातावरण में अगर कोई करे तो, कल कहा ना बाबा ने, कमाल है उनकी। महावीर तो वो है, यहाँ रहने वाले महावीर नहीं, वो जो वहां रहते हैं ना, अगर वो सब कुछ होते हुए कोई कर रहा है तो वहां पे, और ऐसे है बहुत से, ऐसे है। बाबा ने कहा एकलव्य आगे जाएगा अर्जुन से, परिस्थितियां हलचल की, वायुमंडल तमोगुणी, माया अपने हिम्मत से अपना बनाने का प्रयत्न कर रही है। ऐसी प्रलोभन आ रहे हैं कि जिससे लग रहा है उसके सामने ज्ञान योग फीका पड़ रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है, ज्ञान थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो रहा है, उसका आकर्षण अधिक है। वो पद भी हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, धन हो सकता है, नाम हो सकता है, सफलता हो सकता है, यश हो सकता है संसार का, क्योंकि वो लगता है कि वो अभी नहीं मिला तो कब मिलेगा, ये तो होते रहेगा। हाँ, मतलब हमने अभी तक जो तपस्या की उसके वजह से ये सब मिल रहा है। तो व्यवस्था बहुत अच्छी मिल रही है, शायद स्थिति अच्छी है। ये एक सूक्ष्म ही माया है, इसको पकड़ना, ये माया है, ये बुद्धि इसे स्वीकार नहीं करती, बुद्धि को लगता है ये जरूरी है। नाम कीर्ति ये सब जो है एक मान शान, इसमें आत्मा फंसती है, क्योंकि वो एक बार हो गया तो अच्छा लगने लगता है, उसमें टेस्ट आ जाती है, एक चस्का है, वो अच्छा लगता है, वही चाहिए फिर। पर परंतु ज्ञान योग से ले जाती है दूर धीरे धीरे, फिर उसमें और इच्छाएं उत्पन्न होती है, एक इच्छा दूसरी इच्छा, कभी न पूर्ण होने वाली इच्छा है। हिम्मत, अपने हिम्मत से अपना बनाने का प्रयत्न करती है माया, फिर ज्ञान योग का वहां लक्ष्य नहीं रहता है, फिर कोई लक्ष्य नहीं रहता है कि हमारा योग का चार्ट 8 घंटा होना चाहिए या 4 घंटा होना चाहिए, ये सब खो जाता है उधर। उसके लिए पहले से ही इतनी तैयारी चाहिए। माया अपने हिम्मत से अपना बनाने के प्रयत्न कर रही हो, फिर सेकंड में एकाग्र हो सकते हो या टाइम लगेगा? मुरली चली थी ना, अमृत वेले का समय था, सारी आत्मा रूपी फ्लाइट प्लेन एयरपोर्ट पर अपने अपने स्थान पर रूहानी एयरड्रम पर आ गई, कुछ कुछ लग गए चेकिंग में, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, बस इसी में लग गए। और कुछ कुछ क्या करने में लग गए, भरने में लग गए, रिफ्यूलिंग, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्ति भरते भरते पर स्वरूप नहीं बने, शुद्ध संकल्पों में भले रमन किया, वो भी अच्छी अवस्था है, वहां तक भी कभी पहुंचा, पर यहाँ तो है इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर उठ जाना, प्रचंड शक्ति की आवश्यकता है, इस देह से उपराम हो जाना, देह से निकलकर आत्मा ऊपर उठे, वो आत्मा जो रॉकेट से भी तेज, वो आत्मा जो आवाज से भी तेज भागने, जो पंछी की तरह उड़ने वाली है। परंतु तब तक तो बच जाते 5, बस हो गया आज का योग, कल देखेंगे अभी उड़ने का। इसके लिए उसको नीचे बुलाते, आओ मदद करो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बाप दादा को बच्चों के कंप्लेंट का स्वरूप पसंद नहीं है, मैं कमजोर हूँ, माया आती है संतुष्ट नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं है उसे। कंप्लीट बनाने वाले हो तुम, संपूर्ण बनाने वाले हो दूसरों को, स्वयं शिकायत करोगे तो कैसा चलेगा। तो सेकंड में एकाग्र हो सकते हो या टाइम लगता है, तो टाइम तो इसी में चला गया। फिर वो उड़ना परम धाम में, वो दिव्य अनुभव करना, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना, विश्व की आत्माओं को इमर्ज करना और उनका कल्याण करना, वो सब तो दूर की बातें हैं। यह अभ्यास सदा करते रहो तो समय पर शक्ति कार्य में ला सकते हो। यह अभ्यास सदा करते रहो, प्रैक्टिस, जैसे मिलिट्री वाले रोज भागते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज ड्रिल करते हैं, जिसके लिए चुस्त रहते हैं। तो हमें भी ये हमारी रूहानी ड्रिल है, इस देह से निकलकर बाहर जाना, एक सेकंड में एकाग्र होने का अभ्यास करना, अपनी दिनचर्या में भी बीच बीच में करते रहना, केवल सुबह सुबह नहीं। इसको कहा जाता है जब चाहे जहां चाहे वहां स्थित हो सकते हो, कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए। व्यर्थ संकल्पों का तूफान, साइलेंस पावर बढ़ाने के लिए कल बाबा ने कहा दो चीजें, मुख और मन। मन में जो व्यर्थ है उसको समेटना, मन की जो आवाज है व्यर्थ संकल्प उसको समेटना, और मुख के भी जो व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ बोल है, उसको भी समेटना। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प भी नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है। ज्ञान है परंतु फिर भी हो रहा है, यह कमजोरी की निशानी, कर नहीं पा रहे, उसको शक्ति नहीं है। दुर्योधन को पता तो सब है कि मैं गलत कर रहा हूं, परंतु उसमें पावर नहीं है खुद को रोकने की। जो सोचा वो हुआ, संकल्प में परंतु फिर भी सोचना तो है। जैसे मंदोदरी कभी रावण को कहती है कि जब वो सीता को अंदर लंका ले आता है तो वो कहता है कि तुम्हें सीता चाहिए तो तुम तो मायावी हो, तो क्यों ना तुम राम का रूप धारण कर लेते और उसके पास जाते हो। हाँ, मंदोदरी उसको कहती, मंदोदरी वो अभी जो नीचे वो नहीं रामायण में जो मंदोदरी है वो तो कहती है कि क्यों नहीं तुम उसके सामने राम का रूप धारण कर लेते हो, तुम तो मायावी हो, कोई भी रूप धारण कभी भी कर सकते हो, तुम जा सकते हो उसके सामने, क्योंकि उसने तो वो तीन का लेकर खड़ी रहती है जैसे ही तुम आते हो, तुम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, अगर तुमने हाथ लगाया तो तुम भस्म हो जाओगे, तो तुम रूप बदल करके जाओ ना। तो कहता है ये भी मैंने सोचा था परंतु जैसे ही मैं राम का रूप के बारे में सोचता हूँ और अपने को उसमें स्थित करता हूँ तो मैं एक दिव्य स्वरूप से आपूरित हो जाता हूँ, भरपूर हो जाता हूँ, मुझमें पर स्त्री को क्या, किसी भी स्त्री को मैं स्पर्श नहीं कर सकता उस रूप में, तो वो इतना दिव्य स्वरूप है। जैसे ही मैं उस रूप में स्थित होता हूँ, समझता हूँ कि मैं राम हूँ, तो मेरे अंदर सारे संसार के कल्याण की भावना जागृत हो जाती है तो मैं कहाँ से उसके पास जाऊँ इसके लिए मैं वो नहीं कर सकता हूँ। तो ये देखो, अगर अधम से अधम व्यक्ति भी अगर ये सोचे कि मैं देवता हूँ तो उसमें वो केवल सोचने मात्र से वो सारे गुण उसमें प्रकट होने चालू हो जाते, केवल संकल्प मात्र कि मैं फरिश्ता हूँ तो फरिश्ता के सारे गुण आ जाएंगे, मैं देवता हूँ सारे गुण आ जाएंगे, मैं बिंदु आत्मा हूँ परम धाम में हूँ तो जो आत्मा परम धाम में हो जो सब गुण है वो सब उसमें आना चालू हो जाएंगे, केवल संकल्प मात्र से। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प में भी नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है, जो सोचा वो हुआ। ऐसे नहीं सोचते हैं, नहीं होना चाहिए और हो जाए, ये कमजोरी है। क्योंकि अगर समय पर कोई भी शक्ति काम में नहीं आई तो प्राप्ति के बजाय पश्चाताप करना पड़ेगा। हम ऐसे वातावरण में जा रहे हैं कि जहां पर विकारों की आग है और हमने अपने आप को इतना इंसुलेटेड शक्तिशाली नहीं बनाया तो उसका प्रभाव लग हो जाएगा, हम पर पड़ेगा। फिर वो ज्ञान योग रह गया बाजू में, फिर हम में और संसार की आत्मा में क्या फर्क? कोई फर्क नहीं। तो इतना शक्तिशाली बनाना, क्योंकि परिस्थितियों क्या होगा हमें पता ही नहीं। आज शाम तक भी हम यहीं रहेंगे कि और कहीं पहुंच जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। कहां से भी बुलावा आ सकता है, कहां से भी। बाप दादा ने सभी आत्माओं को सर्वशक्तियां वर्षे में दे दी है, तो वर्षे वाली चीज सदा याद रहती है। फलक से कहेंगे ना कि ये शक्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑर्डर आते ही तुरंत जाने की तैयारी हो, समेटना। कल भी कहा ना, समेटने की शक्ति चाहिए, सारे संकल्पों को समेट लो, विस्तार जो हो गया है उसको समेट के आगे बढ़ो, तुरंत रेडी हो जाना। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभव में रहते हो। कल भी बाबा ने कहा था शक्तियों से ऐसी स्थिति है, छोटा 2 साल का बच्चा भी बाबा बाबा कहता है और आप तो नॉलेजफुल के बच्चे एक शब्द बाबा याद नहीं कर सकते। मंजू मैंने इतना छोटा सा काम बस एक है कि दूसरा तीसरा भी हो जाता है। एक बाप ही संसार बन गया, कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने कोई कमजोर संस्कार का भी बंधन नहीं। कोई कमजोर संस्कार है? कोई आदत, कोई संस्कार, कोई वासना, कोई इच्छा, कोई आकर्षण? वो एचिलीस दिखाते हैं ना, एचिलीस हिल, इंग्लिश में कहावत है एचिलीस हिल, ये जो होता है इसको एचिलीस हिल कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, पीछे की जो एडी है उसको एचिलीस हिल। एचिलीस नाम का एक व्यक्ति था कि जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे जब वो छोटा सा बच्चा था एक सरोवर में डुबाया था, तो उसका पूरा देह जैसे वज्र सा हो गया था, परंतु जहां उसको पकड़ा था उसकी माँ ने एड़ी, वो उतना नहीं बन पाया बस ये इतना ही उसका रह गया। तो दिखाया है वो विश्व विजयी हो जाता है, पर उसके दुश्मन को ये बात पता चल जाती है एक दिन, तो बराबर वहां तीर लगाता है एड़ी पर और उसकी मृत्यु होती है। तो एचिलीस हील इंग्लिश में कहावत है जिसको कहा जाता है अपना वीक पॉइंट। माया आपको कहीं वहीं अटैक करेगी जो सबसे वीक पॉइंट है, वो पूरा उसके पास एनालाइजर है, ये तुम्हारा योग भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, योग तो पूछो मत, 8-8 घंटे योग करते हो, ज्ञान में तो कोई यही नहीं है, पर हाँ अगर इसके सामने किसी ने झूठ बोला तो इसको क्रोध आता है, इस पर अगर झूठा इल्जाम लगाया गया तो क्रोध आता है, या फिर ये कहा गया है कि तुम्हारा योग बहुत कमजोर है तो इसको क्रोध आ जाता है कि मेरा तो बहुत है, ऐसे कैसे कहते हो। ऐसी कौन सी पॉइंट है वो बराबर माया के कंप्यूटर में है सेव्ड, उसके फाइल में पावरफुल पॉइंट्स नाम 2 फोल्डर है, पावरफुल पॉइंट्स, वीक पॉइंट। पावरफुल पॉइंट को पहले देखती है फिर वीक पॉइंट को देखती है, यही अटैक करना है उसको। वो हमको करना है, अपना निरीक्षण हमें अपना करना है। जब कोई क्रोध दिलाता है, कहते हैं ना बाबा ने कहा है शायद किसी मुरली में, धन्यवाद दो उसको, भाई तुमने मुझे क्रोध दिलाया, मुझे आत्मनिरीक्षण का अवसर तो मिला कि तुमने क्रोध दिलाया, तुमने कोई बात कही और मुझे क्रोध आया, मुझे पता तो चला कि ये बात से मुझे क्रोध आता है, बहुत धन्यवाद तुम्हारा, आप मेरे टीचर हो, अच्छा किया ये बात कह दी नहीं तो आत्मनिरीक्षण हम करें कैसे जब तक कोई हमको बताए नहीं। हम तो बहुत ही अपनी मस्ती में, मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, बस मेरा तो ज्ञान भी बहुत अच्छा है, मेरा तो योग भी बहुत अच्छा है, मेरी धारणाओं तो पूछो मत, सेवाएं तो नंबर वन, अपने नशे में चल रहे कोई आके तो बताए, थोड़ा नशा कम तो करे तो हम रुके। कोई पुराना संस्कार अभी तक है? कोई संस्कार कोई अज्ञान काल का संस्कार अब तक जो चल रहा है, जो गया नहीं, उसने अपना रूप बदल दिया है बस, शांतिनाथ की तरह। कभी थोड़ा रोब आता है, कल भी रोब के लिए बाबा ने कहा था ना, क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए, लास्ट संडे क्यों गिरा, गिरना नहीं चाहिए, ये सब रोब है। कभी ज्ञान ये कहता है क्या, कभी छोटे के ऊपर रोब आता है, कभी रोब को, क्रोध को शस्त्र के रूप में यूज तो नहीं करते हो, कल कहा ना, किसी ने कहा क्रोध आता है, बहुत अच्छी बात कही किसी ने, स्वीकार तो किया, बाबा रोब की बातें कर रहे हैं, ये कह रहा है क्रोध आता है। क्रोध तो रोब से भी बड़ा है बाबा कह रहे हैं, पर स्वीकार तो किया, सबसे पहले तो ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है, हमारी दुर्गति हो गई है ये स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, हम इसको स्वीकार ही नहीं कर रहे कि हम में ये है, पहले स्वीकृति तो वो नष्ट होगा, अगर उसकी स्वीकार कर लिया तो वो स्वतः ही उसको देखते रहेंगे देखते रहेंगे, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई रस्सी है, अंधेरे में दो लोगों को दिखी, एक उससे भयभीत हो गया और दूसरा भाग खड़ा हुआ, दोनों ही गलत है, क्योंकि वो रस्सी है, सांप है ही नहीं, पहले को लगा ये सांप है और भागा, दूसरे को लगा ये सांप है और वो इतना भयभीत हो गया उससे, वही है फिर, दोनों ही गलत है। विधि क्या है फिर उससे मुक्त होने की, प्रकाश को लाओ, उसके समीप जाओ, निकट से देखो उसको, तो वो नष्ट, वो समझ में आएगा ये क्या है उसका वास्तविक। क्रोध आया, क्योंकि जब क्रोध आता है तब हम बेहोशी में होते हैं, क्षणिक पागलपन है वो, पागल व्यक्ति और क्रोधी व्यक्ति में ज्यादा अंतर नहीं, वो स्थायी पागल है या अस्थायी पागल है, उसका पागलपन उसे बाद में पता चलता है। थोड़े आंशिक पागलपन ही है वो, क्योंकि व्यक्ति क्रोध करने के बाद उसको जब देखता है तब उसको समझ में आता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अपना ही दृश्य, ये मेरा कैसा चेहरा भयंकर था, ये तो मैं था ही नहीं, कोई और था, ये कहां से ये संस्कार आया, वो भी 10 साल के बाद, आज तक क्रोध नहीं किया, क्रोध से मेरा कोई नाता ही नहीं, पर क्रोध आने वाली परिस्थिति भी नहीं थी तब, अब हुआ, मतलब वो था अंदर छिपा हुआ, वो निकल के बाहर आया है, दमित क्रोध था वो निकल के आया, पर वो जब आया तो अब उसको देखना है, आंखों में आंख मिलाकर उस काम को और उस क्रोध को देखो तो वो नष्ट हो जाएगा, बस उसे देखना भर है, हम उसे देखते नहीं, उसे आंखें चुराते, उससे भागते हैं, उसे देखना है आमने सामने, ये है और ये मैं हूं, तो वो नष्ट हो जाएगा, उसे जानना ही उस पर विजय प्राप्त करना है। एक्चुअली अभिमान भी आता है, मैं पुरुष हूं, कभी बच्चों पर कभी माताओं पर अभिमान आता है, मैं बड़ा हूं, अधिकार रखते हो ना, ये क्या किया मेरी है, ये समझते हो, पुरुषों के लिए कह रहे, सेवा के साथी है, न कि मेरे का अधिकार है, मेरा समझने से ही क्रोध अभिमान या मोह आता है, देखो तीन चीजें, मेरा समझोगे तो मोह तो है ही, अधिकार, मेरा अधिकार, अभिमान और क्रोध, अगर मेरा नहीं तो क्रोध भी नहीं आएगा। माता है, बच्चों के ऊपर क्रोध करती हो, हाँ जब बहुत चंचलता करते हैं तो क्रोध नहीं करती, बाबा पूछ रहे हैं बच्चे बहुत, हाँ तो अभी तो कोई चांस नहीं है, जब बाप संसार है, मेरा बाबा है, तो फिर और सब मेरा मेरा, एक मेरे में समा जाता है, तो अभी दिल में क्या आता है, मेरा या तेरा, जैसे भक्ति में कहते हैं तेरा लेकिन मानते हैं मेरा, तो ऐसे तो नहीं करते हो, मेरापन ही बोझ है, तो बोझ को छोड़ना अच्छी बात है ना, तो सदा यह याद रखो कि हम याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं हैं। बैलेंस जहां है वहां पर ब्लेसिंग मिलेगी, तो याद और सेवा का बैलेंस, और किसी भी वायुमंडल में एकाग्रता का अभ्यास, एकाग्रता से जहां बुद्धि को लगाना चाहो लगाओ, उसके लिए पहले से ही अभ्यास, फिर एक बाप दूसरा ना कोई, और फिर क्रोध के बारे में कल तो कहा ना, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए, कोई गाली दे, इल्जाम लगाए, झूठ बोले, कुछ भी करे, पर तुम्हें क्रोध ना आए, और लास्ट में बाबा ने यह कहा कि मेरापन बोझ है, जहां मेरापन तो जैसे बोझ है, कीचड़ है, वहां पे तो कीड़े आएंगे, माया का जन्म होता है मेरापन से। तो सदा याद रखो कि हम याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप के ब्लेसिंग की अधिकारी आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति।